सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिण्णये जिणेणमियुं वेयणमहाहियारं विविह वियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। दसवीं पुस्तक, यही जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार अपना चल रहा है। अभी हम पृष्ठ संख्या 52 पर आ गए। कल हमने उत्कर्षण के बारे में बहुत विस्तार से लब्धिसार ग्रंथ के आधार से देखा था, तो ये अपनी बात धवला में आगे नहीं बढ़ी थी। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, वही शंका समाधान है उत्कर्षण के बारे में, वही शुरू हो जाते हैं 52 पृष्ठ पर। उत्कर्षण किसे कहते हैं, क्योंकि पहले बताया था ना कि बहुत संक्लेश परिणाम होते हैं और उसका उत्कर्षण वगैरह होता रहता है, तो उत्कर्षण कहना किसे, वो बात यहाँ समझा रहे हैं। उसका समाधान, प्रदेशों कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना उत्कर्षण कहलाता है। जब कर्म बनते हैं तो निषेक रचना होती है, जितनी स्थिति बांधी है वहाँ तक निषेक रचना होती है, परंतु कहाँ से नहीं होती है, तो आबाधा काल जो है उसमें कोई निषेक नहीं है, परंतु एक समय में जितने अनंत परमाणु ग्रहण करता है जीव, तो उस समय के परिणाम के अनुसार उसकी स्थिति बनती है। हमने देखा था प्रदेशों की संख्या यानी परमाणु की संख्या तो योग पर आधारित है, योग पर निर्भर है, परंतु कितनी स्थिति बनती है, कितना अनुभाग बनता है, वो कषाय पर डिपेंडेंट है। तो कषाय से अनुभाग और स्थिति का बंध होता है। तो यहाँ वो तीव्र संक्लेश वाला, तीव्र कषाय वाला जीव लिया है, अधिक स्थिति वाला है, और वो पुराने जो कम स्थिति वाले हो गए, वो भी उसका उत्कर्षण होकर वो ऊपर चले जाएंगे। जो नीचे के निषेकों में आ गए हैं उनका फिर दोबारा उत्कर्षण होगा, क्योंकि यहाँ संचय अधिक से अधिक हमें देखना है किस जीव में होता है। तो कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना उसको कहते हैं उत्कर्षण, यानी नीचे के निषेकों के कुछ परमाणु ऊपर चले जाते हैं। उसके लिए हमने कंडीशन देखी थी कि जो उसकी शक्ति स्थिति है, शक्ति स्थिति किसे कहना, जिस समय में वो कर्म परमाणु बंधे थे उस समय की जो उत्कृष्ट अंतिम निषेक की जो स्थिति है उसको उन्हीं वो पूरे समय प्रबद्ध की शक्ति स्थिति कहने में आएगी। तो अपनी अपनी शक्ति स्थिति तक वो ऊपर चढ़ सकते हैं। अब इसमें उत्कर्षण में क्या क्या होता है उसको कहते हैं, उदयावली के स्थिति के प्रदेशों का उत्कर्षण नहीं किया जाता है। स्थिति यानी यहाँ निषेक को ही स्थिति कहा, एक स्थिति दो स्थिति तीन स्थिति, तो जो उदयावली यानी वर्तमान समय से एक आवली काल तक लगातार जो उदय में आने योग्य जो निषेक है उसको कहते हैं उदयावली। उदयावली में असंख्यात निषेक है, एक एक समय वाला एक एक निषेक, और उसके प्रदेश यानी उसके जो परमाणु है उसका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि एक बार उदयावली में आने पर वो उदय होकर ही निकल जाएंगे, अभी उसका दोबारा उसमें कोई परिवर्तन होता ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। तथा उदयावली के बाहर की सभी स्थितियों का उत्कर्षण नहीं किया जाता है। उदयावली के बाहर वो क्या सभी के सभी का उत्कर्षण होगा, तो नहीं होता। तो किसका उत्कर्षण होता है, किंतु चरम स्थिति के आवली के असंख्यात भाग को अतिस्थापना रूप से स्थापित करके आवली के असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है, क्योंकि ऊपर स्थितिबंध का अभाव है। ये अभी जो स्थिति बंधी है वो कहाँ तक उसका उत्कर्षण होगा? तो कहते आवली का असंख्यात भाग छोड़ना और उसके ऊपर के असंख्यात बहुभाग वहाँ का उन स्थितियों का यानी उन निषेकों के परमाणुओं का उत्कर्षण होता है। यह जघन्य उत्कर्षण है। कल हमने देखा था ना जघन्य, वो चार समय पर घटित किया था, आवली के असंख्यात भाग बीच में छोड़ा था और यहाँ ऊपर तो आवली का असंख्यात भाग लिखा है परंतु किसका होता है उसकी बात है, असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है लिखा। पुनः उपरिम स्थितियों में अति स्थापना को आवली मात्र प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। ये हमने कल इसको भी दृष्टांत देकर समझाया था। वो जो चार पहले में आवली का असंख्यात भाग अति स्थापना का छोड़ा था, वो बढ़ते 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 ये तो निक्षेप तो उतना ही रहेगा और वो अति स्थापन बढ़ते बढ़ते आवली तक हो जाएगा। हाँ, तो पुनः उपरिम स्थितियों में अति स्थापना को आवली मात्र प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए, फिर ऊपर निक्षेप की ही वृद्धि होती है। जैसे हमने देखा था कल, चार में तो अति स्थापना थी चार की और चार तो निक्षेप था। अति स्थापना बढ़ते बढ़ते 16 तक हुई, फिर भी निक्षेप चार का चार ही रहा था। अब अति स्थापना 16 की हो गई तो अपने ऊपर 16 छोड़कर निक्षेप बढ़ते चले जाएंगे, निक्षेप नीचे की ओर आएंगे तो चार के पांच हुए, फिर छह हुए, सात हुए, इस तरह से। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है परंतु कल हमने बहुत विस्तार से अच्छी तरह से देखा था। अति स्थापना और निक्षेप का अभाव होने से नीचे उत्कर्षण नहीं होता, नीचे के उसमें भी उत्कर्षण, नीचे उत्कर्षण नहीं होता। उत्कृष्ट अति स्थापना, अभी उत्कृष्ट कितनी है हमने देखा था कि जो अपकर्षण करके नीचे आया है और आबादा काल में उसके नया जो बंध है तो उसके लगता कोई वहाँ निषेक है ही नहीं है, तो उसका उत्कर्षण होकर कहाँ जाएगा? तो पहले निषेक से ऊपर चला जाएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से। तो उसके लिए अति स्थापना कहने में आएगी, वैसे तो वहाँ कोई निषेक है ही नहीं है परंतु उसके लिए अति स्थापना कौन सी है? तो उत्कृष्ट अति स्थापना एक समय अधिक आवली से न्यून आबाधा प्रमाण है। ये कैसा घटित होता है वो भी हमने कल देखा था, क्योंकि बंधावली के बंधावली जिसके बंध के बाद एक आवली तक तो उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता और ऐसा नीचे अपकर्षण करके आए हुए परमाणु अब वो अपकर्षण करके आबाधा का जो चल रहा है उसके उदयावली के ऊपर आया, यानी 17वें समय में मान लेते हम, 16 समय की हमने आवली मान ली है तो 17वें समय में वो आ गया। ऐसे देखते तो उसका आबादा चल रहा था परंतु अपकर्षण करके नीचे आया है ना, अब उन परमाणुओं का फिर उत्कर्षण, तो उसकी जितनी शक्ति स्थिति है वहां तक उसका उत्कर्षण हो सकता है। तो ये एक समय एक आवली आबादा में से कम करना, इतना तो अंतराल है पहले निषेक और उस परमाणु में, हाँ, इसलिए वो उत्कृष्ट अतिस्थापन कहलाएगा उसको। और जघन्य अतिस्थापना आवली प्रमाण है। अब कर्म प्रदेशों की स्थितियों के अपवर्तन का नाम अपकर्षण है। उत्कर्षण जैसे बताया वैसे अपकर्षण भी एक प्रोसेस होता है। स्थिति ने ये जो निषेक है तो उनमें से कुछ परमाणु अपनी जगह छोड़कर कम स्थिति वाले बन जाते हैं, यानी उनकी स्थिति कम होती है, यानी हम समझाने के लिए कहेंगे वो ऊपर के निषेकों में से छूटकर नीचे के निषेकों में आ गए, उसको कहते हैं अपकर्षण। तो कर्म प्रदेशों की स्थितियों के अपवर्तन का नाम अपकर्षण है। अपवर्तन होना है घट जाना, स्थिति का घट जाना, और वहां स्थिति के उत्कर्षण होना कहा था। उसकी अति स्थापना स्थिति कांडक को छोड़कर अन्यत्र आवली प्रमाण है। अब उत्कर्षण में तो नए बंध की अपेक्षा थी, अपकर्षण में ये नए बंध की अपेक्षा नहीं है। तो अपकर्षण में क्या होता है? सत्ता में जितने पड़े हैं निषेक, उनमें से अभी यहाँ के परमाणु नीचे नीचे आएंगे, तो नीचे कहाँ से कहाँ तक दिए जाएंगे? सर्वत्र दिए जाएंगे, एक्सेप्ट अभी मान लेते हैं अंतिम निषेक के परमाणु कहाँ तक जाएंगे, उसका नीचे का आवली छोड़ देना। और जैसे हमने 16 समय की अगर आवली मान लेते, 16 समय छोड़कर 17वें समय से, यानी बीच में 16 छोड़ना, ऊपर के कहाँ जाएगा? उसके नीचे के एक आवली छोड़कर उसके नीचे सर्वत्र उसको जाएगा। उदयावली के समय तक, उदय के समय तक उसका अपकर्षण होकर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो परमाणु वहाँ निकले। अभी ऊपर से दूसरे के कहाँ जाएंगे? उसके नीचे के एक आवली छोड़कर उसके नीचे चले जाएंगे। ऐसे सर्वत्र ऐसा ही समझना। तो ऐसा अपकर्षण कहाँ तक हो सकता है? तो हमने देखा था उदयावली के 16 समय हैं, तो उसके 17वें का अपकर्षण होकर कहाँ चला जाएगा? हाँ, तो नहीं, उसके लिए कैसा करना? अभी 16 समय है ना ये आवली, अभी उसमें से एक समय कम करना, 15 हो गए, और 15 का त्रिभाग करना, 5 हुए, उसमें वो एक मिला देना, 6 हो गए, तो नीचे के 6 निषेकों में उसको दिया जाएगा और 10 में नहीं दिया जाएगा। इसको वो जघन्य से जघन्य कहेंगे, हाँ वो जघन्य अतिस्थापना कहलाएगी। और यही अंतिम ये उदीर्णा का पॉइंट, उसके नीचे उदयावली में फिर वो नहीं होगा। 17वें का माल नीचे आएगा 6 में, परंतु भी 16 में से वो उसमें अपकर्षण नहीं चलेगा। देखो फिर पढ़ते इसको, कर्म प्रदेशों की स्थितियों के अपवर्तन का नाम अपकर्षण है, उसकी अतिस्थापना स्थिति कांडक को छोड़कर अन्यत्र आवली प्रमाण है। स्थिति कांडक जो है उसके लिए अलग रूल है, अपकर्षण जो होना, ऊपर के परमाणु नीचे आते हैं, स्थिति कम होती है, वो दो अलग अलग विधियों से होती है। एक तो ये जो अपकर्षण हमने देखा, प्रत्येक निषेक में से परमाणु नीचे आते हैं, सामान्य अपकर्षण कहते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो निषेक है उनका अभाव होकर ये सभी परमाणु नीचे आते। किस तरह से? पहले समय में कुछ आए, दूसरे समय में आए, तीसरे समय में आए, चौथे समय में, इस तरह से एक छोटे अंतर्मुहूर्त में पूरा। पहले क्या हुआ था, निषेकों में कुछ परमाणु नीचे आए थे, अपने अपने निषेक अपने जगह पर कायम थे। अब ये स्थिति कांडक घात, अंत की ओर के कुछ स्थितियां यानी कुछ निषेक पूर्ण रूप से उनके परमाणु नीचे आते हैं, यानी सत्ता में जितनी स्थिति पड़ी है वो सब घट जाती है। हमने पंचलब्धि में देखा था ना, वो प्रायगल लब्धि में एक बड़ा स्थिति कांडक घात होता है और अंत कोड़ा कोड़ी सब रह जाते, उसका ऊपर का जितना कुछ जो स्थिति में पड़े थे परमाणु सबके सब नीचे आ जाते, उसका घात हो जाता है। ये छोटे अंतर्मूर्त में ये कार्य बनता है, उसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। अब उसकी बात यहाँ नहीं, उसका रूल जो है वो बाद में बताएंगे। यहाँ क्या बात हो रही, किसी भी निषेक के परमाणु नीचे आते हैं, सर्वत्र जाते हैं, कितना छोड़कर? अपने अपने नीचे एक आवली छोड़कर, उसके लिए उसको कहेंगे अतिस्थापना वाली। विशेषता इतनी है कि 53 पेज पर तीसरी लाइन, विशेषता इतनी है कि उदयावली के बाहर की प्रथम स्थिति की स्थिति यानी निषेक, उदयावली हमने 16 समय की समझ ली, उदयावली के बाहर के ने ऊपर का प्रथम स्थिति यानी प्रथम निषेक, उसका एक समय कम आवली के दो त्रिभाग प्रमाण अतिस्थापना है। अभी हमने देखा था, मान लेते कि 16 समय की आवली है, आवली इज इक्वल टू 16 समय, तो अभी क्या कहते हैं, एक समय कम आवली यानी 15, अभी उसके क्या है, दो त्रिभाग यानी 10, वो अति स्थापना है, यानी उसमें परमाणु नहीं दिए जाएंगे। अति स्थापना है और एक समय अधिक त्रिभाग प्रमाण निक्षेप है। निक्षेप है ने जिन निषेकों में परमाणु दिए जाते हैं उसको निक्षेप कहते हैं, और जिनमें नहीं दिए जाते उसको अति स्थापना कहते हैं। बीज उदय समय से लेकर 6 में होगा और उसके ऊपर 10 में नहीं होगा, क्योंकि 17वां नंबर का जो है उसका अपकर्षण होकर कहां तक जाता है, उस 17वें के नीचे 10 छोड़ देना, 17वें के नीचे 16 है, बीच वाले 10 छोड़ना और नीचे के 6 में दे देना। क्या नहीं, नहीं नहीं, जो कोई नया बनता है, एक बंधावली जिसको कहते हैं, एक आवली तक उसमें कुछ बनता नहीं है, उसके बाद ये होगा और बाद में वो सत्ता का निषेक कहलाएगा। तो जो कुछ सत्ता में परिवर्तन होता है उसमें भी हो सकेगा, परंतु एक आवली तक नहीं। यानी यहाँ हम 10 निषेक और यहाँ 6 निषेक, 10 निषेक तो अति स्थापना वाली है और ये 6 निषेक निक्षेप है, निक्षेप रूप। इससे उपरिम स्थितियों में, यानी अभी हमने जो 17वां मान लिया है उदयावली का ऊपर का एक, उसके ऊपर यानी 18, 19, 20 अभी ऊपर तक जितनी स्थिति पड़ी है, उपरिम समयों में एक समय अधिक के क्रम से उत्कृष्ट रूप से आवली प्रमाण अति स्थापना के प्राप्त होने तक, क्या कहते हैं, अभी जो 18 नंबर है वो कहां तक उसके जाएंगे परमाणु? हाँ बराबर है, 18वें नंबर के भी नीचे के 6 निषेकों में निक्षेप होगा, यानी 6 निषेक उसको निक्षेप कहेंगे उसको हम, और बीच वाले जो अति स्थापना है वो 11 समय की हो जाएगी। 19 वाले के नीचे अभी 12 समय छोड़कर नीचे 6 में आएगा उसका भी मान। 20 वाला अभी अपने अपने नीचे वो बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा कब तक होगा? तो हाँ, ये नीचे आवली है और उसके भी ऊपर आवली छुटेगी और उसके ऊपर का अति स्थापना वाली पूरी आवली जिसको हम अति स्थापना एक आवली प्रमाण हो जाएगी, तब तक वो बढ़ेगी। 10 से हमने शुरू किए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी नीचे 16 तो उदयावली है, अभी उसके ऊपर 16 जो है वो अति स्थापना वाली कही गई, 16, 16, 32 हो, यानी 33 वाला जो है निषेक उसके परमाणु नीचे पूरे उदयावली में उसके सर्वत्र उसके परमाणु दिए जाएंगे। नहीं नीचे सर्वत्र नहीं, सॉरी वो नीचे के अभी 6ठे से 7वें में आना शुरू हो गया।
नहीं नहीं ऊपर एक आवली हो गया है
ना। नहीं नहीं
नहीं
नहीं, वो पूरा 16 को नहीं लेना है। देखो हमने पहले नीचे 6 से शुरू किया था, बीच में 10 का गैप है और 17 नंबर का माल नीचे आया, 6 में आया, 18 का भी वो बीच में अभी उसके 11 हो गए, 19 के लिए बीच में 12 हुए, 20 के लिए बीच में 13 हुए, 21 के लिए बीच में 14 हुए, 22 के लिए 15 हुए और 23 के लिए 16 हुए। तो 16 छोड़कर 23 का माल 6 में ही आता गया। नहीं मैं 33 की बात की थी, उसका उदयावली में आएगा, परंतु हम क्रम से जा रहे हैं ना। अभी 6 का 7 कब होगा? अब जो 24वां है, हाँ तो 24वां तो वो अपना है, अभी उसके नीचे 16 छोड़ दो और 16 छोड़कर अभी नीचे 7 रहेंगे, 16, 7, 23 हो जाएंगे ना, उसके नीचे की संख्या 23 है, अभी उसका निक्षेप यहाँ बढ़ता चला जाएगा, ये 7 हो गया, 7 और ये 16, 24 के नीचे 7 निक्षेप और 16 अति स्थापना, 25 के लिए 8 और 16, इस तरह से, यानी वो नीचे बढ़ता चला जाएगा, निक्षेप बढ़ता चला जाएगा। तो 33 वाले का क्या होगा पोजीशन? 33 के नीचे 32 है ना, तो बीच के एक आवली जो है वो तो अति स्थापना, और नीचे के पूरी उदयावली उसका आकर्षण करके उसमें माल जाएगा। अभी इसके ऊपर ऐसा ही निक्षेप बढ़ते चले जाएगा और अपने अपने नीचे अपने अपने नीचे उसका एक अति स्थापनावली होगी। ये अति स्थापना बढ़ाना चाहिए। उसके आगे एक समय अधिक के क्रम से प्रत्येक स्थिति के प्रति निक्षेप बढ़ाना चाहिए, यानी 6 से 7, 8, 9 हमने देखा ना, इस तरह। ये उत्कर्षण क्या है और अपकर्षण क्या है इसको समझाया। वो अपकर्षण तो समझना आसान है, उत्कर्षण में नए बंद की कंडीशन है तो वो उसमें जो वेरिएशन पड़ता है ना, बीच में अंतर भी पड़ता है क्योंकि वहाँ आबाधा है और यहाँ के नीचे के निषेक है, इसलिए कल थोड़ा समझने में कठिनाई हुई। अपकर्षण तो आसान है समझना, कुछ बात नहीं है। हाँ, यहाँ तो और भी बहुत है, वो तो अपकर्षण तो हमने उसमें नहीं समझा, परंतु वह बहुत डिटेल में विस्तार से वो बताया है। अभिशंका, ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये 21वें सूत्र में हमने देखा था, अभी इस लेफ्ट पेज पर 52 नंबर पे पेज पर। विलोम रूप जब है वहाँ उत्कर्षण की ज्यादा ही पॉसिबिलिटी, संभावना उत्कर्षण की ज्यादा है, क्योंकि उत्कर्षणों के ऊपर ज्यादा ज्यादा माल चला जाता है, क्योंकि एक ही परिणाम से अपकर्षण भी हो उत्कर्षण हो ऐसा नहीं हो सकता है। जब उत्कर्षण हो रहा है तो उत्कर्षण होगा उसमें, और यहाँ ऐसा ही जीव होगा कि गिल्लिया है कि जिसमें उत्कर्षण अधिक हो रहा है, और वो भी उत्कर्षण परिणाम जैसे अलग अलग होते हैं उसमें वेरिएशन होगा, तो उसके भी परिणाम एक सरखे एक सतत तो नहीं रहेंगे। उसमें भी बहुत बार ऐसा लिखा है ना, बहुत बार का अर्थ क्या है, बीच बीच में उसका नहीं भी होगा तो उस समय उसका अपकर्षण भी हो सकता है। फिर भी यहाँ मेजॉरिटी किसकी बात चल रही है कि वो संचय अधिक है तो उसका उत्कर्षण का प्रमाण ज़्यादा होगा। हमने ये कौन सा जीव लिया था कि अभी पहले स्टार्टिंग से पृथ्वी का एक से शुरू किया था, बादर पृथ्वी का एक वाला, और वो कर्म स्थिति में 2000 सागर कम काल तक उसी पर्याय में वो पर्याप्त अपर्याप्त में घूमता रहा, पर्याप्त के बहुत बहुत ज़्यादा किए, अपर्याप्त के कम किए, अपर्याप्त काल छोटे छोटे थे, पर्याप्त काल बड़े बड़े थे। आयु का बंध है वो जघन्य योग से किया था, और उत्कृष्ट योग के स्थान बहुत उसके बार होते हैं, और संकलेश भी बहुत बार हुआ था। ऐसा जो बाद में त्रस में आया, बादर त्रस पर्याप्त में उत्पन्न हुआ, वहाँ भी यही 6 आवास उसने किए, और अभी अंत की ओर, अंतिम यानी अभी वहाँ से तो एक इंद्रिय में ही जाएगा, परंतु अंतिम यानी अभी समझना हा? तो 7वें नरक का नारकी हुआ, उसकी बात यहाँ चल रही है, क्योंकि वहाँ उत्कृष्ट संकलेश है और वहाँ योग भी ज़्यादा है पंचेंद्रियों में, तो इसलिए वहाँ वो अधिक परमाणु को ग्रहण करेगा, इसलिए वहाँ उसको ये मैक्सिमम वाला जीव लेना है। इसलिए हर एक जीव में ये सभी बातें नहीं बनेगी, किसी में जो बनती है उसकी बात यहाँ ली, हमको उत्कृष्ट समझना है, फिर वो जघन्य वाला बाद में समझाएंगे। देखो शंका, यदि ऐसा है तो नारकियों में ही बहुत बार क्यों नहीं उत्पन्न कराया? आपको ज्यादा से ज्यादा माल चाहिए उसके संचय, तो नारकियों में ही बहुत बार उत्पन्न करा, तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह नारकियों में ही बहुत बार उत्पन्न होता है, बहुत बार उत्पन्न हो चुका है, और भी लास्ट वाला वो बता रहे हैं। किंतु उनमें उत्पत्ति की संभावना न होने पर अन्यत्र उत्पन्न होता है। क्या बात है, जैसे आप कहेंगे तो बार बार लगातार 7वें नरक में ही भेज दो, तो नहीं हो सकता, 2 बार लगातार जा सकता है, ज़्यादा ज़्यादा बार नहीं। ऐसे हर एक नरक की जो कुछ है कितनी बार जाएगा, तो बीच में उसका अंतराल भी पड़ेगा, तो वहाँ जाना संभव नहीं है, तो फिर अन्यत्र तीर्यंचों में, मनुष्यों में, कभी देव में भी जाके आएगा। नारकियों में उत्पन्न होता हुआ बहुत बार सप्तम पृथ्वी के नारकियों में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि दूसरी पृथ्वियों में तीव्र संकलेश और दीर्घ आयु स्थिति का अभाव है। ये लगातार की बात नहीं चल रही है, बहुत बार की बात चल रही है। अनेक बार सातवीं नरक में, क्योंकि 2000 सागर है ना, उसमें बहुत बार हो तो 33 सागर वाले बहु भी उसने बहुत किए होंगे, बहुत बार किए होंगे। परंतु नारकी के बहु कभी लगातार नहीं हुए, जैसे मनुष्यों में मनुष्य की स्थिति हम देखते लगातार मनुष्य 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 हो गए, ऐसे कोई जीव लगातार देव 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 या लगातार नरक 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 नहीं हो सकता, बीच में तो मनुष्य की रेंज में आते ही है। नहीं, उसमें भी अभी कोई जीव ज्यादा बार नरक में जाए, कोई जीव ज्यादा टाइम देव में चला जाएगा। हाँ, नरक के पर्याय और देवों के भी ऐसे होती है उसमें। हाँ, मैक्सिमम की बात आती है उसमें, अधिक से अधिक कितने हो सकेंगे किसी जीव के। वो मनुष्यों की 24 नहीं लिखी है ऐसा कहते हैं, 24 की बात तो हमने सुनी है बहुत बार, परंतु वो हाँ ये वहाँ तो हमने पृथक्त्व की बात हमने देखी थी कितनी बार हो सकता है, जैसे पुरुषों में तो 8 बीच में का पर्याप्त करके फिर 8 ऐसा हो सकता है, स्त्रियों में हमने देखा था बहुत सारे स्त्री वेद पुरुष वेद नपुसक वेद सबके मिलकर संगी पंचेंद्रियों में 48 तो वही हो गए, और लाम अंतिम वो भोगभूमि वाला लिया था बड़े में बड़े आयु करने के लिए, और बीच में एक एक अपर्याप्त का डाला था उसके। अभी हम 54 पृष्ठ पर आते हैं। अब ये जो नरक की जीव है तो उसके लिए और कंडीशन बताते हैं। ये तो नारकियों में उत्पन्न हुआ वहां तक पढ़ा था, अब नरक में उत्पन्न होने पर क्या होता है। प्रथम समय में आहारक रुजुगति से जाकर पहले ही समय में आहारक होता है। मैंने देखा ना, आहारक होता है ना उसका वो तो योग, क्योंकि बिना आहारक वाले के योग कम होगा। आहारक होता है ना वहाँ पुद्गल स्कंद का ग्रहण शुरू हुआ तो उसका योग की भी वृद्धि का कारण है वो। प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर, तद्भवस्थ है ने वही उसका उपपाद योग भी वही पहला समय है, दोनों वही रुजुगति से जाना ही वो तद्भवस्थ और आहारक होना है। उसने उत्कृष्ट योग के द्वारा कर्म पुद्गल को ग्रहण किया, उसमें भी जो कुछ वेरिएशन होगी उसमें इसका जो है उत्कृष्ट योग है। प्रथम समय तद्भवस्थ पद के यानी ऐसा कहने का निर्देश का फल एक कथन क्यों किया है उससे क्या जाना जाता है। द्वितीय व तृतीय समय तद्भवस्थ का प्रतिषेध करना है। वो दूसरे समय में तद्भवस्थ कौन होगा। हाँ मंजू बेन, हाँ कितने मोड़ वाला, एक मोड़ वाला, बहुत अच्छा। दूसरे समय में तद्भवस्थ हुआ, आहारक हुआ, और तृतीय समय तद्भवस्थ का प्रतिषेध करना है। तृतीय दो मोड़ लेकर जाता है कोई जीव, जाने वाले तो मनुष्य तिर्यन चाहिए, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच हो गए और मनुष्य भी हो गए, उसके लिए जो कुछ कंडीशंस आवश्यक है वे जाएंगे वहां। अब वहां जाते हैं तो हमने देखा था किसी भी भव में जाता है तो पहला समय उपपाद योग का होता है, उसके पश्चात एकांत अनुवृद्धि का होता है, और फिर पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति पूरी होते के उस समय से लेकर अंत समय तक परिणाम योग स्थान होता है। तो यहाँ लिया जघन्य उपपाद योग आदि का प्रतिषेध करने के लिए उत्कृष्ट योग पद का निर्देश किया। वहां लिखा ना उत्कृष्ट योग के द्वारा उसने कर्म पुद्गल को ग्रहण किया, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। नहीं, वो नीचे गई मैं। उत्कृष्ट योग पद का निर्देश किया है। कर्ता कारक में यह तृतीया विभक्ति है। ऊपर क्या लिखा, मैंने ऊपर का पढ़ा ही नहीं क्या? हाँ अच्छा, अभी पढ़ती हूँ। तेनेव परम समय आहारेण परम समय तद्भवत्थेन उक्कस्येन योगेन आहारितो। कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति लिखा ना, तेनेव परम समय आहारेण या आहारक जो है आहारक हुआ है परम समय में उसने, ये तो संस्कृत प्राकृत में ऐसा है ना, जो कर्ता की विभक्ति होती है वो विशेषण को भी लगाते हैं, परंतु यह कर्ता के अर्थ में है, उसने ग्रहण किया, उसने पुद्गल स्कंद को ग्रहण किया, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। यहाँ सूत्र में इव शब्द उपमार्थक है, तेनेव है ना ऊपर, तेनेव। आशय यह है कि जिस प्रकार कर्म स्थिति के भीतर सर्वत्र यह जीव प्रथम समय में आहारक होता है और प्रथम समय में तद्भवस्थ होता है, क्योंकि इसके विग्रह गति नहीं होती, वही जीव ऐसा लिया ना, उसी प्रथम समय में आहारक होने वाले जीव ने प्रथम समय में वो तद्भवस्थ होकर आहार ग्रहण किया, पुद्गल कर्म को ग्रहण किया। ये तेनेवे ऐसा लिखा है तो वो ये जो कंडीशन है वो पहले से बता चुके हैं कि हर बार वो रुजु गति से, जिसको ईशु गति भी कहते हैं, यानी बिना मोड़ वाली गति, पहले ही समय में वो आहारक हुआ था, यानी बीच में टाइम पास नहीं किया उसने प्रत्येक बार वो तो अधिक से अधिक योग के द्वारा उसका ग्रहण चला, इसलिए उसने कर्म का संचय भी अधिक किया। तो वही जीव बताने के लिए कहा, उसी प्रकार यहाँ नरक गति में भी जानना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तद्भवस्थ जीव ने उत्कृष्ट योग के द्वारा ही आहरण किया। आहरण यानी ग्रहण करना, कर्म पुद्गल को ग्रहण करना, अर्थात कर्म पुद्गल को ग्रहण किया, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। आहारक तो हम नौकर्म पुद्गल को ग्रहण करने वाले को कहते हैं, परंतु नौ कर्म स्कंदों का अवलंबन लेकर इसके योग को बढ़ाता है, अपने योगों की वृद्धि होती है, इसलिए उसमें कर्म का भी ज्यादा ग्रहण हो जाता है। उसके बाद उक्कस्याय वड्ढिये वड्ढिदो, उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। उपपाद योग के बाद एकांत अनुवृद्धि योग स्थान होता है, तो उसमें जो बढ़ने का, वृद्धि होने का जो क्रम है, वो स्लोली भी वृद्धि हो सकती है और बहुत फास्ट भी वृद्धि हो सकती है, यानी बहुत वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा लिखा। अकेला वृद्धि को प्राप्त हुआ ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सभी जीव वृद्धि को प्राप्त होते हैं, परंतु वृद्धि में भी जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि हो सकती है। हमने देखा जैसे भी कोई दो दो से बढ़ेगा, कोई तीन तीन से बढ़ेगा, कोई चार चार से बढ़ेगा, या कितने गुना से बढ़ेगा वो, तो इसकी वृद्धि का प्रमाण भी ज्यादा है, उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। इसी को समझाते भी, उत्पन्न होने के द्वितीय समय से लेकर एकांत अनुवृद्धि योग होता है। हमने पहले इसको देखा था, कहाँ तक होता है याद है ना, कौन से पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय के एक समय पहले तक, और उपपाद योग के बाद दूसरे समय से लेकर, ये एक वहां से लेकर वो कंटिन्यूस वृद्धि जो है एकांत अनुवृद्धि का उसके। शरीर नाम कर्म का उदय तो चलता ही है। देखिए जीव जो अभी वहां वैक्रियक शरीर का पुद्गलों का ग्रहण हो रहा है, अभी सातवें नरक की बात चल रही है, तो वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, उसमें जीव में वो योग की कैपेसिटी है, परंतु कौन जीव कितना उसमें ज़्यादा उसमें ग्रहण करता है, ज़्यादा योग उसकी वृद्धि होती है, उसकी बात चल रही है। किसी के कम होती है योग, किसी के योग ज़्यादा होता है। उत्पन्न होने के द्वितीय समय से लेकर एकांत अनुवृद्धि योग होता है, क्योंकि प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से योग की वृद्धि देखी जाती है। ये योग कितना बढ़ता है, पहले समय में अभी उपपाद योग था, दूसरे समय में वो असंख्यात गुणा हो गया, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणा, हम मान लेते चार गुणा अगर करेंगे, पहले समय में 16 होगा तो सोल जो ये 84 ये हो जाए 64 हो जाएगा, फिर उससे चार गुणा, उससे चार गुणा, उससे चार गुणा, इस तरह से असंख्यात गुणा बढ़ता चला जाएगा। वहाँ गुणकार जघन्य उत्कृष्ट तद व्यतिरिक्त भेद से तीन प्रकार का है। अब ये जो गुणकार है, हम मान लेते कोई दो गुना से बढ़ेगा, कोई तीन गुना से बढ़ेगा, कोई चार गुना से बढ़ेगा और कोई दस गुना से बढ़ेगा, तो दस गुना बढ़ेगा उसका वो गुणकार बड़ा है ना, उत्कृष्ट है। दो गुना से बढ़ेगा उसका वो गुणकार जघन्य है, और बीच वाले है वो तद व्यतिरिक्त है यानी मध्यम वाले हैं। तो ये जीव कौन सा लिया? उत्कृष्ट गुणकार से बढ़ता हुआ लिया। उनमें से शेष दो वृद्धियों का परिहार करने के लिए, यानी यहाँ जघन्य गुणकार नहीं है या जघन्य वृद्धि नहीं है, तद व्यतिरिक्त नहीं है, इसलिए वो उत्कृष्ट शब्द लिखा। उसके लिए उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ ऐसा कहा है, अन्यथा उत्कृष्ट द्रव्य का संचय नहीं बन सकता। योग अधिक तो द्रव्य का यानी पुद्गल परमाणु का ग्रहण अधिक। ये सभी जो जो कंडीशंस बताए हैं वो इसीलिए बताए कि वहां अधिक से अधिक कर्म पुद्गलों का ग्रहण हो, ऐसा ही जीव लिया है। अब 25 नंबर का सूत्र, नहीं 24 का, अंतो मुहूर्तेन सव लहुम सव ही पज्जत्ति ही पज्जत्त यदो। अंतर्मुहूर्त द्वारा अतिशीघ्र सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ। उसकी जो पर्याप्ति होने का यानी अपर्याप्त का काल छोटा है, अतिशीघ्र पर्याप्त हुआ ना, हमने देखा, क्योंकि पर्याप्त होने पर अभी उसका योग और भी बढ़ेगा, परिणाम योग में तो और भी वृद्धि होती है। पर्याप्तियों की पूर्णता का काल एक समय अधिक नहीं है, यानी पर्याप्तियों को तो अंतर्मुहूर्त लगता ही है, एक समय कभी नहीं हो सकता, एक दो चार या बीस पच्चीस ऐसे समय में वो पर्याप्ति कभी पूरी होगी नहीं। इस बात का कथन करने के लिए सूत्र में अंतर्मुहूर्त पद का ग्रहण किया है। पद यानी शब्द, ये मुंह के ऊपर कुछ बिंदी दिख रही है मुझे, ऊपर सूत्र में मुंह लिखा है ना, अंतर्मुहूर्त, मुंह में बिंदी लगाई है ऊपर। इसलिए वहां अंतर्मुहूर्त लिखा, अंतर्मुहूर्त द्वारा लिखा, क्योंकि संख्यात समयों में पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। एक भी पर्याप्ति पूर्ण पहली कौन सी है मालूम है ना, पर्याप्ति आहार। ये छह पर्याप्ति कौन कौन सी है? नारकियों को कितनी पर्याप्ति होगी? दो पांच चार छह, हाँ। पहली आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी श्वासोश्वास पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये छह पर्याप्ति। तो ये छोटे में छोटे, छोटे से छोटे काल में वो पूर्ण करता है। पूर्णता के लिए भी जो अंतर्मुहूर्त लगता है, किसी जीव को छोटा अंतर्मुहूर्त लगता है, किसी को थोड़ा बड़ा लगता है, तो ये छोटे वाले अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियों को पूर्ण करता है, इसलिए यहाँ अंतर्मुहूर्त लिखा। ये दूसरी लाइन, पर्याप्तियों के अजघन्य काल का निषेध करने के लिए सर्वलघु पद कहा है। सूत्र में प्रत्येक शब्द क्यों डाला है उसकी बात यहाँ हो रही है। सर्वलघु यानी कम से कम काल में उसने पर्याप्तियों को पूर्ण किया। एक भी पर्याप्ति के अपूर्ण रहने पर पर्याप्तकों में परिणाम योग नहीं होता, इस बात के ज्ञापनार्थ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ ऐसा कहा है। ये परिणाम योग जो वृद्धि वाला है वो सभी पर्याप्तियां पूर्ण होने पर होता है, इसलिए जल्दी से पर्याप्तियां पूर्ण करी तभी उसका योग भी और बढ़ सकता है बाद में। शंका, इस सूत्र का क्या प्रयोजन है? उसका समाधान, अपर्याप्त योग से पर्याप्त योग असंख्यात गुणा है। अपर्याप्त काल में जो योग है उससे असंख्यात गुणा पर्याप्त काल वालों का योग होगा, ये बताने के लिए ये जल्दी पर्याप्त हुआ इस तरह से कहते हैं, यह बतलाना इस सूत्र का प्रयोजन है। 25 नंबर का सूत्र, तत्थ भवठिदि 33 सागरोपमाने, वहां भवस्थिति 33 सागरोपम प्रमाण है। इस सूत्र द्वारा अध्यावास की प्ररूपणा की गई है, शेष कथन सुगम है। हमने देखा ना अध्यावासे ने उस भव का काल अब 26 नंबर आउम अणुपालेन तो बहुसो बहुसो उपकसानी जोगट ठानानी गच्छति आयु का उपयोग करता हुआ बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। इसके द्वारा योगावास की प्ररूपणा की, पहले हमने देखा था ना भवावास अद्धावास वो आयु जगने वाली वो भी बात। अब 27 नंबर बहुसो बहुसो बहुसंकिलेश परिणामो भवति बहुत बहुत बार बहुत संकलेश परिणाम वाला होता है। इसके द्वारा संकलेशावास की प्ररूपणा की गई है। शंका, शेष तीन आवासों की प्ररूपणा क्यों नहीं की है? वो आवास हुआ है, आवास करना उसको। यहाँ कौन कौन सी की? योगावास, संकलेशावास और अद्धावास। हाँ, ये तीन, बाकी तीन क्यों नहीं किए ऐसा प्रश्न है ना। बाकी हमने वो भवावास भी देखे थे, संकलेशावास भी देखे थे और प्रदेश विन्यासावास भी देखा था। हाँ, योगावास वगैरह वगैरह, योगावास तो हो गया। यहाँ उसका समाधान, यहाँ भवावास तो संभव नहीं है। भवावास क्यों, किसको कहा था? एक इंद्रियों में या त्रसों में, इन जनरल की बात की थी। तो लगातार उसी भव, उस प्रकार के भवों में, वहाँ बादर पृथ्वी काय को में लिया था ना, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, तो उसमें ही बहुत उसने भ्रमण किया तो उसको भवावास कहा था। पर्याप्तों के भव ज़्यादा किए उसको भवावास कहा था। और यहाँ नारकियों का एक ही भव की बात चल रही है अभी, इसमें लगातार वही के वही भव नहीं होते, इसलिए एक ही भव में वो हो जाता है। क्योंकि एक ही भव में भव बहुत्व का अभाव है। भवावास में भव बहुत्व लिए थे, अधिक भव किसके? पर्याप्तों के, त्रसों में भी और एकेंद्रियों में भी हमने ये कंडीशन देखी थी। वहाँ पर पर्याप्तों के बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको यहाँ भवावास कहा था। अब ये एक भव की बात चल रही है। आयु आवास की प्ररूपणा भी नहीं की जा सकती क्योंकि उसका योगावास में अंतर्भाव हो जाता है। आयु का जो बंद होगा तो जघन्य योग से करेगा, ये पहले जो कंडीशन है वो योगावास में फुलफिल हो जाती है, अन्यथा वो उत्कृष्ट योग होता है उसका। शंका, यहाँ योग बहुत्व क्यों स्वीकार किया जाता है? अधिक से अधिक योग की बार बार चर्चा क्यों कर रहे हो? ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान, ज्ञानावरण के बहुत द्रव्य का संचय करने के लिए यहाँ योग बहुत्व स्वीकार किया जाता है। यदि कहा जाए आयु को उत्कृष्ट योग द्वारा बांधने वाले के ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संचय होता ही है, सो भी बात नहीं है। क्योंकि इस प्रकार से तो ज्ञानावरण के बहुत द्रव्य का क्षय देखा जाता है। हमने देखा था वो तो आठ में विभाजित होता है ना, तो उसका लॉस ज़्यादा होता है, क्षय होता है ना। वो निर्जरा की वहाँ बात नहीं थी, लॉस ज़्यादा है उसका। हाँ, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो आठ में बटता है वो, तो उसके खाते में बहुत कम आता है। और इसलिए योगावास से आयु जघन्य योग द्वारा ही बनती है यह जाना जाता है। जब योगावास कह दिया तो आयु जघन्य योग से बनती है ये उसी में ही गर्भित है, इसलिए अलग से उसका कथन नहीं किया है। अतएव आयुरावास, रा क्यों कहा वहाँ? हाँ, अश्विन भाई आप जानते हैं रा क्यों है, आयु आवास क्यों नहीं लिखा? आयुहु ऐसा संस्कृत शब्द है, आयुहु तो विसर्ग का र हो जाता है आगे तो रावास हुआ। यानी वो कुछ गलत नहीं है, शब्द कैसे तैयार हुआ इसको हमको देखना है। आयु आवास कहेंगे तो भी कुछ गलत नहीं है। अभी हिंदी में हम ऐसा कहेंगे मराठी, परंतु संस्कृत के हिसाब से आयुहु आवास, आयुर आवास होता है। जैसे ठीक है, अतएव आयुरावास योगावास में अंतर्भूत है, अतः उसकी पृथक प्ररूपणा नहीं की, अलग से नहीं बताया परंतु वो समझना। तथा यहाँ अपकर्षण उत्कर्षण आवास की भी प्ररूपणा नहीं की जाती है, क्योंकि उसका संक्लेश आवास में अंतर्भाव, ये रफा रहे वो भा के ऊपर चाहिए। अंतर्भाव हो जाता है, यह संग्रह नहीं की विषयभूत एक भव विषयक आवास की प्ररूपणा कही है। एक भव संबंधी जो नारकी की एक भव है उसके एक भव संबंधी आवास की प्ररूपणा है, परंतु उसमें वो छहों का जो कुछ है सार वो गर्भित है, उसमें अधिक से अधिक योग बताने का ही यहाँ प्रयोजन है। एवं संसरी दूण थोवावशेषे जीविदव्वये ति जोग जव मज्जस सुवरी सुवरिम अंतोमुत्तद्धम इच्छिदो अच्छिदो, क्या कहते हैं, इस प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रहने पर योग अवयव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा। योग का जो कोई वहाँ कितना योग है उसके बताने के लिए ये योग अवयव मध्य कहने में आता है। यव मध्य ने बीच में ज़्यादा और टेपरिंग दोनों, जैसे गेहूं कैसा होता है, यव नाम का अनाज कैसे है, बीच में ज़्यादा है और दोनों ओर कम है, इस तरह से वहाँ ये आठ समय तक लगातार योग रहेगा या सात समय तक रहेगा, छः समय तक रहेगा, पाँच समय तक रहेगा, चार समय तक रहेगा, तो यहाँ तो चार की लिमिट है और यहाँ तीन और दो समय तक लगातार होगा, तो ऐसे उसके अंदाज से इसको योग यव मध्य या योग यव रचना कहते हैं। तो ये योग मध्य ने योग यव मध्य ने ये बीच वाला, इसको आगे समझाएंगे, विशेष विशेषार्थ करके समझाएंगे। हाँ, तो कहते जीवन के थोड़ा शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा। शंका, यहाँ द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य योग स्थान से लेकर अवस्थित प्रक्षेप उत्तर क्रम से, क्या कहते हैं, ये अभी यहाँ जो योग स्थान है, योग कितना है, एक किसी जीव का योग है तो उसका विशिष्ट योग स्थान कहलाएंगे, किसी अन्य जीव को ज़्यादा योग है थोड़ा तो उसको कहेंगे ये अगला वाला स्थान है योग का, किसी के और ज़्यादा है उसको कहेंगे ये और तीसरा स्थान है, ऐसे द्विन्द्रिय पर्याप्त से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक के जितने कुछ वेरिएशंस है सब, उन सबको हम कहेंगे ये योग स्थान है अलग अलग। तो द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य योग स्थान, अभी द्विन्द्रिय पर्याप्त में कोई जघन्य योग स्थान है कोई उत्कृष्ट, द्विन्द्रिय पर्याप्त में भी योग अलग अलग प्रकार के होंगे ना, किसी को कम है, किसी को थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, परंतु ये उसकी रेंज है, उसकी लिमिट है। ऐसे जघन्य से लेकर अवस्थित प्रक्षेप उत्तर क्रम, प्रक्षेप यानी उसे में हमने ऐड करते जाना, हाँ, अवस्थित यानी फिक्स, तो उसमें जो कुछ फिक्स यानी कुछ उतनी की वृद्धि होती वृद्धि होती जाती, प्रक्षेप करना यानी उसमें मिलाते जाना, क्योंकि हमने जघन्य से शुरू किया है, ये द्विन्द्रिय पर्याप्त का कोई जघन्य योग है, हमने देखा ना ये योग के जो वेरिएशन, द्विन्द्रिय पर्याप्त का फिर और थोड़ा ज़्यादा योग, और थोड़ा ज़्यादा योग, और थोड़ा ज़्यादा योग, ऐसे द्विन्द्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के योग स्थान हम अलग अलग बताएंगे, तो उसमें इसमें ये वृद्धि हुई वृद्धि हुई वृद्धि हुई वृद्धि हुई, तो उसको अवस्थित वृद्धि कही, उसी को प्रक्षेप कहा, प्रक्षेप करने ने ऐड करना, उसमें मिलाते जाना, जोड़ देना, अवस्थित है ना वो फिक्स, हाँ, उतने ही प्रमाण में वृद्धि 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 देखी जाएगी। तो ये हाँ अभी हम मान लेते चार की कोई भी संख्या लो ना समझने के लिए, तो कुछ तो अवस्थित प्रक्षेप उत्तर क्रम यानी थोड़ी थोड़ी वो यानी निश्चित वृद्धि से वृद्धि होता हुआ, हाँ, क्रम से कहाँ तक, उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक प्राप्त हुआ जितना भी योग है, जो कि पहले दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुण चतुर्गुण आदि के क्रम से उत्तरोत्तर गुण वृद्धि रूप स्थानों को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं, थोड़ा 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 वृद्धि को प्राप्त हुआ ना, तो ऐसी पोजीशन आई कि ये डबल हुआ। मान लेते 100 था, थोड़ा 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 बढ़ते 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 कोई किसी पॉइंट पर 200 हो गया, फिर और थोड़ा थोड़ा बढ़ते तो थोड़े 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 ही हो, किसी एक पॉइंट पर वो 400 हो जाएगा। इस तरह से दुगुण वृद्धि यानी दो गुणा वृद्धि हुई, और फिर आगे चलकर दुगुण चतुर्गुण हुआ, ऐसे उत्तरोत्तर गुण वृद्धि रूप स्थानों को प्राप्त है, यानी अधिक 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 बढ़ते बढ़ते अनेक उसके स्थान होते हैं। और जो हाथी के शुंडा दंड के आकार का है वह योग यवाकार कैसे हो सकता है, ये शंका क्या है। हाथी की सोंड कैसी है, वो बढ़ते ही चली जाती है इसे ऊपर तक, बहुत बड़ी है ना, तो उसको कहते हैं, उसको योग मध्य कैसे कहते हैं, बीच में ज्यादा और टेपरिंग ऐसा कैसे कहते हैं। एक तो ये कंटिन्यूस बढ़ते हुए बताओ, शंकाकार की शंका क्या है। द्विंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग स्थान तक ये योग बिल्कुल गुणित क्रम से थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए फिर भी 2 गुना है, 4 गुना हुआ, वो तो 32 गुना हुआ, और भी कितने गुना हो गया, तो ऐसे गुना होता है, तो एक सही का ऐसा बढ़ता हुआ बताओ, इसको बीच में ये ऐसा क्यों कहते हैं, यव मध्य ऐसा उसका यवाकार कैसे हो सकता है। हाथी के सुन जैसे बढ़ता हुआ बताओ तो हम समझ सकते हैं, ये उसकी शंका है, यह योग यवाकार कैसे हो सकता है। शंका समझ में आई ना, योग जो है वो कम जघन्य योग से उत्कृष्ट योग तक बढ़ते हुए योग पाए जाते हैं, तो उसको अपने बीच में ज्यादा मोटा और दोनों ओर टेपरिंग ऐसे कम होता हुआ कैसे बताया। जब वह यवाकार नहीं है तब उसका मध्य भी संभव नहीं है, क्योंकि जो वस्तु असत है उसका मध्य मानने में विरोध आता है। शंकाकार ऐसा है, थोड़ा कुछ पढ़ा है हा? और आचार्यों की भाषा में आचार्यों को समझाना चाहता है। समाधान, यहाँ उक्त शंका का उत्तर कहते हैं, वह इस प्रकार है। द्विंद्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर, ये जो हमने अभी जो शंकाकार ने बताया था ना, ये द्विंद्रिय पर्याप्त के योग से लेकर वहां तक के पर्याप्त शब्द डाला है, तो यहाँ परिणाम योगों की बात चल रही है, क्योंकि वो एकांत अनुवृद्धि का वो तो अपर्याप्त काल में रहता है, तो यहाँ जो कंटिन्यूस बढ़ने की बात की थी वो पर्याप्तों में जो पाया जाता है परिणाम योग स्थान, उसकी चर्चा है। द्विंद्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक के सब योगों को ग्रहण करके एक पंक्ति में स्थापित करने पर, अब ये बताए ना, ये सब हम योग ऐसे कंटिन्यू स्थापित करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो कितने हो गए, तो उन योग स्थानों का आयाम यानी लंबाई, यानी उसके संख्या हम कहेंगे, संख्या में गिनने हैं ना, तो कितने होगी। जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होता है, जो असंख्यात है, यानी ये सब पर्याप्तों के परिणाम योग स्थान कितने हैं, तो असंख्यात है, तो कितने असंख्यात है, श्रेणी के असंख्यातवे भाग वाले असंख्यात है, उनमें से सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर आगे के जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र योग स्थान 4 समय प्रायोग्य है। अभी शुरू के जो कुछ है जघन्य से शुरू की, तो यहाँ कितने ही जो उसको भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही करना, सब मिलके भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, और ये भी असंख्यात है तो उसको भी नाम तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही कहेंगे, तो ये जो है 4 समय प्रायोग्य, 4 समय लगातार वो होने योग्य, ऐसा 4 समय प्रायोग्य कहा। फिर इससे आगे के जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र योग स्थान 5 समय प्रायोग्य है। 4 समयों तक लगातार वो उसके 4 समयों के प्रायोग्य, प्रायोग्य ने होने योग्य 4 समय प्रायोग्य है। अभी इसके आगे के, अभी यहाँ से यहाँ तक के योग स्थान ये 5 समय प्रायोग्य है। हाँ, 5 समय तक। हाँ देखो ये फिर सब पढ़ेंगे वो। अब यहाँ पढ़ेंगे पहले 59 पेज पर, क्योंकि ये शंका अभी चल रही ना, विशेषार्थ पहले पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। नीचे प्रति समय मन वचन और काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेश परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं। उन कार्मण स्कंदों, कार्मण नहीं, उन पुद्गल स्कंद जो है उनका अवलंबन लेता है जीव। योग की शक्ति तो है उसमें, क्योंकि उसके अवतारिकादि शरीर नाम कर्म का उदय है, परंतु उसमें जीव जितना उसका अवलंबन लेता है वो उसके निमित्त से यहाँ योग है उसके। और इनके स्थानों को योग स्थान कहते हैं। वो योग हम गिनेंगे अविभाग प्रतिच्छेदों में, तो कितना है, एक जीव का इतना है, दूसरे की इतना है, तो उसको हम उसका एक एक स्थान कहेंगे। इतना योग है, हम कहते ना इसके जघन्य योग है, इसके ज्यादा है, उसको थोड़ा ज्यादा है, उसको छुदा जाता है, तो एक एक जितना जितना है उसको हम एक एक स्थान कहेंगे। योग स्थान 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले जाना है, फिर दोबारा पढ़ते हैं। उपपाद योग स्थान, एकांत वृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। अच्छा समझाया। हाँ ये 3 प्रकार के योग स्थान है। भव के प्रथम समय में स्थित जीवों की, जीवों के चाहिए उपपाद योग स्थान होते हैं, जीवों के करना उसका, यानी कोई भी जीव भव धारण करता है तो पहले समय में उसको उपपाद योग स्थान है। इसके पश्चात शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक, पूर्ण होते ही उसका परिणाम शुरू हो जाएगा योग स्थान, परंतु उसके एक समय पहले तक, शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक एकांत वृद्धि योग स्थान होते हैं, उसी को एकांत अनुवृद्धि भी कहा। यदि लब्धि अपर्याप्त जी होता है, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तों के तो पर्याप्तियां कभी पूर्ण होगी ही नहीं, तो उसको एकांत अनुवृद्धि में मर जाएगा, उसको परिणाम योग स्थान होगा ही नहीं, ऐसा कहने का प्रसंग आवेगा। इसलिए उसमें जो अलग कंडीशन बताएंगे, तो लब्धि अपर्याप्त जीव होता है, यदि लब्धि अपर्याप्त जीव होता है तो आयु के अंतिम तीसरे भाग को छोड़कर, क्योंकि उसे भी आयु का बंध तो होगा, क्योंकि उसमें से तो बाहर निकलेगा, अन्य भव धारण करेगा, तो आयु के त्रिभाग में जो भव जो उसका है, उसका जो अंतिम त्रिभाग है, तब उसकी आयु बंधेगी। तो अंतिम त्रिभाग को छोड़कर उपपाद योग के बाद अन्यत्र एकांत अनुवृद्धि योग स्थान होते हैं। ये कंडीशन किसके लिए? लब्धि अपर्याप्त के लिए। लब्धि अपर्याप्त वो छोटे में छोटी आयु वाला जीव है, वो श्वास का 18वां भाग उसके 3 भाग करना, तो लास्ट वाला छोड़ देना, वहाँ परिणाम योग हो गए, और पहले 2/3 जो है उसमें एक समय वाला उपपाद छोड़कर बाकी एकांत अनुवृद्धि का स्थान होगा। नहीं, उसमें भी हर एक में जाती है ना, एक केंद्रीय द्विंद्रीय आदि, उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट अलग अलग भेद हो गए, परंतु एक जीव को तो एक समय वाला ही है, तो एक ही होगा उसको, नाना जीवों की अपेक्षा उसमें वेरिएशन है। इसके बाद शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के समय से लेकर, यह पर्याप्त जीवों की बात चल रही है ना, या शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर इन्हें पर्याप्तों में या लब्धि अपर्याप्तक के अंतिम तीसरे भाग में परिणाम योग स्थान होते हैं। परिणाम योग स्थान कब होते हैं? पर्याप्त जीवों में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर भव के अंत तक, और लब्धि अपर्याप्तकों में हाँ वन थर्ड क्या था लेकर के आगे लेकर के है ना वो हाँ भव के अंत तक समझना। ये लिखा नहीं है समझने के लिए। एक कहे छे वहां से लेकर कहाँ तक, स्टार्टिंग तो बताई तो भव के अंत तक। ये परिणाम योग स्थान, अब ये जो परिणाम योग स्थान अभी हमने देखा था ना, ये जो यहाँ हमने जो बढ़ते हुए योग स्थानों की जो एक लाइन में रचना की थी, ये पर्याप्तों की बात इसीलिए उठाई थी कि ये परिणाम योग स्थानों की उसने बात की। शंकाकर ने भी इसी को पूछा था, तो कहते हैं ये परिणाम योग स्थान द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य योग स्थानों से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट योग स्थानों तक क्रम से वृद्धि को लिए हुए होते हैं। यानी जघन्य में जघन्य योग है, उससे कोई दूसरा किसी अन्य जीव का जो होगा या उसी जीव का किसी अन्य समय में होगा तो उसको दूसरा स्थान कहेंगे, उसमें योग थोड़ा ज्यादा है। तीसरा स्थान है उसमें और ज्यादा है, चौथे में और ज्यादा है, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी वृद्धि होते हुए सब स्थान पाए जाते हैं। द्विन्द्रिय पर्याप्त से लेकर संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान जघन्य, इसमें जघन्य वाले का भी जघन्य लेना और संगी पंचेंद्रिय को उत्कृष्ट योग होता है उसमें भी उत्कृष्ट लेना। ये जो पूरी रेंज है ना, ये यहाँ जघन्य से उत्कृष्ट तक की जो मर्यादा है उसमें हमने देखा था जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण ये स्थान होते हैं, यानी असंख्यात अलग अलग स्थान है ये। क्रम से वृद्धि को लिए होते, इनमें आठ समय वाले योग स्थान सबसे थोड़े होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित सात समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित छह समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। यानी यहाँ समय तो ज्यादा है परंतु योग स्थानों की संख्या कम है। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो ये बात है ना, हमने ये सब यहाँ से यहाँ तक लिखे। अभी यहाँ जो डिवीजन किया है तो उसमें समय तो आठ लिए परंतु उसमें स्थान कितने हैं हम मान लेते हैं, थोड़े ही स्थान है उसमें, तीन स्थान है समझ लेते हैं, ये आठ समय वाले हैं। उसके दोनों ओर सात समय वाले हैं, वो स्थान तो उससे ज्यादा है, ये सात समय वाले स्थान ज्यादा हैं दोनों ओर के, दोनों पार्श्वों के दोनों ओर के, उसकी जघन्य की ओर के भी और उत्कृष्ट की ओर के भी। फिर उससे और आगे जाएंगे तो छह समय वाले वो भी ज्यादा है, पांच समय वाले समय हाँ छह समय तक रहने वाले हाँ। हाँ अवस्थित रहेंगे उतने समय। नहीं 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 उसमें मैक्सिमम योग है वो उसकी बात नहीं है, आठ समय वाले योग स्थान है वो बीच में ही है ना, वो कम समय वाले वो ऊपर तक चले जाएंगे क्योंकि इस ओर तो चार तक ही है और वो दो समय तक वाले वो तीन और दो समय तक वाले वो बाजू ले लेना एक बाजू में। अभी ये पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा, फिर हम ओरिजिनल भी पढ़ेंगे जिसका विशेषार्थ किया है और वो नहीं समझेगा तो फिर कल उसमें से देखेंगे। कर्मकांड में है ये योगों की बात। हाँ देखिए लिखा है ना यहाँ। हाँ तो कर्मकांड में हम पढ़ेंगे इसको, योग का तो भला बहुत बड़ा प्रकरण है उसमें। ये मेरे ख्याल से अगले भाग में ही इसमें ही लास्ट में योगों की बात आने वाली, बहुत उस विस्तार से आएगी। जब तक हम समझ कर हाँ समझ गए नहीं कहेंगे, तब तक वो पढ़ाते रहेंगे। अभी समझ गए, अच्छी बात है। हाँ देखो अभी यहाँ पढ़ते हैं। ए, पहले क्या लिखा, आठ समय से शुरू करते हैं छठी लाइन में। इनमें आठ समय वाले योग स्थान सबसे थोड़े होते हैं, योग स्थानों की संख्या कम है वहां पर। आठ समयों की अपेक्षा वहां बीच में बड़ा दिखाया, परंतु वहां योग स्थानों की संख्या कम है। देखो ये कर्मकांड अभी निकालो, अभी आप शंका है तो अभी हम उसमें ब्राउन पुस्तक होगी पीछे वाली, ब्राउन होगी या ब्लू होगी, द्वितीय भाग पूर्वार्ध में ही है ना ये 218 यानी देखते हैं। द्वितीय ब्लू में होगी मेरे ख्याल से 218 यहाँ देना एक पुस्तक। हाँ हाँ उसमें है क्या, छत्तीस। हाँ यही वो परिणाम योग स्थान वगैरह वो सब लिया उन्होंने। फिर ये वहाँ से शुरू होता है, मगर ये जो योग ये जो यवाकार के चित्र भी है इसमें, यवाकार के चित्र था आगे आगे चलकर मिलेगा द्विवेंद्रीय। दो सौ 70 पृष्ठ पर है। अभी हमारा जो योग वाला जो है वो आगे सब ये बात यहाँ लिखी है ना। देखो दो सौ 70 पृष्ठ पर 251 गाथा की टीका में लिखे हैं, मिला। बेन्द्रिय पर्याप्त जीव का जघन्य परिणाम योग स्थान तय लगाए, जो अभी हमने पढ़ा उसी इसी के आधार से लिखा है। संगी पर्याप्त जीव का उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान पर्यंत परिणाम योग स्थान अनुक्रमतई एक एक स्थान विषय समान वृद्धि प्रमाण करी बत्ती जानने। द्विंद्रिय पर्याप्त का जघन्य से लेकर संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट तक समान वृद्धि से वृद्धि होते होते हुए ये सारे योग स्थान हैं। अब उसमें से अब ये जो छोटे में छोटा है उसमें एक एक योग स्थान में अभी ये तो ये जो चर्चा की ना यहाँ स्पर्धक की, अभी इसमें स्पर्धक कैसे लगाना, इसमें वर्ग वर्गणा कैसे लगाना, जिस हाँ कर्म परमाणु में हमने क्या देखा था, कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। हाँ, और क्योंकि कर्म परमाणु में फल देने की विशिष्ट शक्ति है उसको हम अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं, तो परमाणु को वर्ग कहा। जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद है, कर्मों की बात चल रही है, उनके समूह को, उनके गट्ठे को, उनके जो हम उसको इकट्ठा कंसिडर करेंगे उसको वर्गणा कहा। एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा है, तीसरे में और एक ज़्यादा है, चौथे में और एक ज़्यादा है, ऐसे अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहा। और एक टाइम में ऐसे अनंत स्पर्धक जीव ग्रहण करता है। अब हम यहाँ योग की बात कर रहे हैं, तो योग किस में होता है, आत्मा के प्रदेशों में होता है। तो आत्मा के प्रदेश असंख्य है, हाँ, और उसमें योग के जो अविभाग प्रतिच्छेद है, तो एक आत्मा का प्रदेश उसमें योग के अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, तो उसमें हम असंख्यात कहेंगे। तो इसलिए आत्मा के प्रदेश को यहाँ वर्ग कहा। जिन जिन आत्म प्रदेशों में असंख्यात में से हम मान लेते हैं लाख में या मैक्सिमम जो है उनमें समान 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 योग है, अभी अविभाग प्रतिच्छेद यानी योग समान है, तो उन आत्म प्रदेशों को वर्गणा कहेंगे। जिसमें योग और ज़्यादा है उसको वो दूसरी वर्गणा कहें, तीसरी वर्गणा कहें, और अनेक वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे। वहाँ तो अनंत का हिसाब था कर्म में, योगों में सर्वत्र असंख्यात का हिसाब लगाना है, इसलिए कहेंगे एक योग स्थान में असंख्यात स्पर्धक होते हैं। अब ये यहाँ जो जघन्य हमने देखा था द्विंद्रिय का, दूसरे स्पर्धक की पहले वर्गणा में, हाँ पहली वर्गणा में, अब यहाँ जो कुछ है वो तो जघन्य स्पर्धक वाले है, ऐसा हम समझेंगे। देखो यहाँ क्या कहा, तीन विषय 252 की टीका, जो बेन्द्रिय पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग स्थान है, जो हमने अभी यहाँ ड्राइंग निकाले ना जघन्य से कल उत्कृष्ट तक संगी पंजी, ये तो पहला योग स्थान की बात चल रही है, परिणाम योग स्थान में सबसे जघन्य वाला, उसमें कितने स्पर्धक है, तो स्पर्धक भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग है। ये सब यहाँ असंख्यात का ही, जैसे हम कर्मों में स्पर्धक कितने होते तो अनंत होते कहते, तो ऐसे यहाँ कितने हैं स्पर्धक, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग है, असंख्यात है, इतना समझना हमें। अभी अभी सुनो जरा, हाँ आपका प्रश्न बाद में पूछना, यहाँ के अनंतर स्थान, अभी इसका दूसरा स्थान है, वहां से लगाएं एक एक स्थान प्रति, हमने देखा था ना वहाँ योग बढ़ता है, तो योग बढ़ता है नहीं, वो स्पर्धक बढ़ते चले जाएंगे उसमें, यहाँ जितने स्पर्धक है उससे आगे वाले में ज्यादा स्पर्धक होंगे, तो एक एक स्थान प्रति सूचंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक बत्ती जानने, जघन्य स्पर्धक बत्ती यानी जघन्य वाला जो स्पर्धक में इतना अविभाग प्रतिच्छेद था वो यहाँ बढ़ गया, ये जघन्य स्पर्धक बढ़ते हुए जाएंगे यहाँ पर। यानी उतने उतने अविभाग प्रतिच्छेद वो हर एक योग स्थान में बढ़ते चले जाएंगे, योग बढ़ता, अपनी भाषा में योग बढ़ता हुआ जाएगा। अभी उसके अविभाग प्रतिच्छेदों की बात हम कौन करेंगे यहाँ पर, ऐसे ध्रुव कहिए एक रूप स्थानक स्थानक प्रतिवृद्धि, ध्रुव वृद्धि है ना, प्रत्येक स्थान में फिक्स जो कुछ है वो बढ़ता हुआ योग है, दूसरे स्थान में इतना बड़ा, फिर उतनी वृद्धि करके तीसरा स्थान हुआ, फिर उतनी वृद्धि से चौथा स्थान हुआ, ऐसे होते होते कोई ऐसा स्थान है कि जघन्य स्थान से दो गुना हो जाएगा। तो फिर दो गुना से चार गुना हो गया, आठ गुना हो गया, ऐसे करते करते कितने गुना होगा, तो उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान कितने गुना हो गया, तो कहते हैं पल्ल का अर्धच्छेदनी का असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार हो है। यानी जघन्य योग स्थान के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग करी गुणाकार जो गुणे जो प्रमाण होई वो सर्वोत्कृष्ट योग स्थान है, संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग स्थान। अब ये बीच का कुछ भाग छोड़ देंगे हम। ये हमें योग यव मध्य समझना है ना, योग का यव मध्य देखना है ना, उसकी बात चल रही थी अपनी। एक यहाँ फिगर भी लिखी थी उन्होंने, ऐसे आगे के पीछे हो गई, इसमें अनुक्रमणिका में देखना योग यव मध्य, ये 273 पेज के आसपास ही होगा। पर है क्या, देखना ये योग यव मध्य की उन्होंने ऐसी फिगर लिखी थी, उसकी कैसे असंख्यात गुणा है वो घटित किया था, मगर यहाँ नहीं मिल रहा है। यानी वो निरंतर 8 समय की बात जो है ना वो समझ में नहीं आ रही ना अपनी। अरविंद भाई को देना, उनको मिलता है क्या, देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे और फिर मूल पर आएंगे। यानी वो तो इतनी बात है, वो 8 समय की बात किस अपेक्षा से 8 समय गठित कर रहे, वो समझ में नहीं आई है ना। अभी हम देखते हैं, देखो वो 8 समय वाले से वहां से फिर से पढ़ते हम। हाँ, सेम योग स्थान वाले लगातार 8 समय तक रहने वाले, ऐसी बात वो उनकी संख्या कम है। ये जो योग स्थान है वो तो लगातार 8 समय वाले हैं, तो ये 8 समय से वो हम पढ़ते हैं यहाँ 60 पृष्ठ पर, पेज नंबर 250, वही फिगर में देखना चाहती थी, 258 पेज पर। हाँ, ये मैं पढ़ती हूँ 243 का। देखो यहाँ ये 242 की टीका में ये बात आई है, 257 पृष्ठ में शुरू में। ये प्रथम भाग कर्मकांड का 257, देखो पढ़ती हूँ मैं, ख्याल में आए ऐसी बातें। उपपाद योग स्थान और एकांत अनुवृद्धि योग स्थान, इनके प्रवर्तन का काल जघन्य व उत्कृष्ट एक समय ही है। प्रवर्तन यानी पलटना, उपपाद योग स्थान एक समय तक ही रहता है, वो उसका पलटकर कोई दूसरा होने का सवाल नहीं है। एकांत अनुवृद्धि में एक समय में एक ही योग है, दूसरे समय तो असंख्यात गुणा होता है, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, एक एक समय रहकर ही पलटता है। अभी उसका कारण क्या है, जाते यानी क्योंकि उपपाद योग स्थान जन्म के प्रथम समय विषय ही हो है, और एकांत अनुवृद्धि योग स्थान समय समय वृद्धि रूप अन्य अन्य हो है। पलटना हर समय हो रहा है, बहुरी इतर इनको छोड़कर कौन रहे अभी, परिणाम योग स्थान। इतर जे परिणाम योग स्थान तिनके प्रवर्तन का काल, प्रवर्तन का काल यानी लगातार 2 समय रहकर प्रवर्तन होता है कि 3 समय रहकर होता है कि 4 समय रहकर होता है, 2 समय से 8 समय पर्यंत है। अभी ये ख्याल में आता है ना, ये पंडित जी बहुत इसको आसान करके समझाते हैं। पलटना है ना, योग पलटते रहता है, तो 2 समय तक वही रहा और फिर पलटा, या 3 समय तक वही रहा फिर पलटा, उसको कहते उसका प्रवर्तन का काल। भावार्थ, एक परिणाम योग स्थान 2 समय तक लगाए आठ समय पर्यंत रहे, अधिक न रहे, वो तो फिर तो चेंज होगा ही होगा। पीछे अन्य योग स्थान हो है, इसीलिए उसको परिणाम योग स्थान कहा। उसमें या तो समानता रहती है कितने काल तक, दो समय से लेकर आठ समय तक, या बाद में क्या होगा, वृद्धि भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। ये बीच वाले जो है ये आठ समय तक इतने रह सकते हैं लगातार रहे, तो ये इतने तो आगे आगे में वो हानि वृद्धि वगैरह होती रहती है, या तो उसके योग बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, बेइंद्रिय पर्याप्त जीव तिह का जघन्य परिणाम योग स्थान तय लगाए, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान पर्यंत अंतर रूप जे योग स्थान कहे थे तीन बिना। अभी ये जो है ना जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, अब अंतर बिना और सांतर और निरंतर ऐसे उसमें भी है, ये तो लगातार वृद्धि के कुछ स्थान है, बीच में कोई गैप हो सकता है कि वहाँ कोई स्थान ही नहीं है, फिर लगातार वृद्धि के स्थान हो गए, फिर बीच में स्थान हो गए, ऐसे तीन बिना जेते निरंतर योग स्थान है तीन की यवनामा अन्न के आकार रचना काल की अपेक्षा जानने। ये जो यवाकार रचना है वो काल की अपेक्षा, कितने काल तक वही योग रहकर फिर प्रवर्तन होता है उसकी अपेक्षा यवाकार है। ऐसा देखे तो जघन्य से उत्कृष्ट तक तो बढ़ते हुए है, योग की अपेक्षा यवाकार नहीं है, लगातार उसमें रहने की अपेक्षा काल की अपेक्षा यवाकार है। तहां जे निरंतर आठ समय विषय प्रवर्ते ऐसे योग स्थान मध्य विषय लिखने, और जे योग स्थान निरंतर सात समय विषय प्रवर्ते। देखो अभी हम ये काल की अपेक्षा है, अब ये कहाँ है होते क्या है होती उसकी बात भूल जाओ। निरंतर आठ समय तक होने वाले योग स्थान कितने होते हैं, मान लेते चार है पांच है जो कुछ है, वो हमने बीच में लिखेंगे। निरंतर सात समय होने वाले योग स्थान दोनों और उसका हाफ हाफ करके लिखेंगे, यहाँ ये बाजू और यहाँ, ये दोनों ही सात सात समय वाले होने वाले हैं। बहुरी जो योग स्थान छह समय विषय निरंतर प्रवर्ते ते तीनों के आधे ऊपर लिखने, यानी वो यहाँ छह वाले आधे ऊपर आधे नीचे। बहुरी जे योग स्थान पंच समय विषय निरंतर प्रवर्ते ते तीनों के आधे तो नीचे और आधे ऊपर लिखने, ऐसा लिखा नीचे और ऊपर ऐसा लिखा। जे योगस्थान चार समय विषय निरंतर प्रवर्ते तीनों के आधे तो नीचे और आधे ऊपर लिखने, जे योगस्थान तीन समय विषय निरंतर प्रवर्ते ते चार ही समया वालों के ऊपर ही लिखने। देखो ये हमने आठ समय वाले लिखे, सात दोनों ओर लिखे, छह के भी आधे आधे ऊपर नीचे, पांच के भी, चार के भी, तीन के तो ऊपर ही लिखने, चार के ऊपर ही सब लिखने, तीन के आधे ऊपर आधे नीचे नहीं लिखने, ऊपर ही लिखने, सब पूरे के पूरे ऊपर लिखने। हाँ, बहुरी जय योगस्थान दो समय विषय निरंतर प्रवर्ते ते तीन समय वालों के ऊपर लिखने, दो वाले भी यहाँ लिखने, चार तक तो नीचे ऊपर समान लिखे, तीन समय वाले और दो समय वाले ऊपर लिखना, नीचे नहीं लिखना। यहाँ त्रस जीव संबंधी परिणाम योग स्थान विषय मध्यवर्ती स्थान मध्य विषय लिखिए है, तीन ते पहले स्थान व पिछले स्थान, तीन के ऊपर व नीचे लिखिए है, ऐसा अर्थ जानना। अब उन स्थानों में प्रमाण बता रहे हैं, ये पता है ना, ये सबसे कम है और ये असंख्यात गुणा है दोनों ओर के, इसलिए उसको यव मध्य रचना कही है। अभी उसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो 259 पृष्ठ पर नीचे से वो तीसरा पैराग्राफ, हाँ देखो यानी 259 पेज पर ऊपर के दो पैराग्राफ छोड़कर नीचे बीच वाला तीन लाइन वाला एक पैराग्राफ है। या ही ते गाथा विषय ऐसा कहा, क्या कहा, जो आठ समयों वाले का थोड़ा प्रमाण है, आठ समयों वालों के योग स्थानों की संख्या कम है, लगातार आठ समयों तक वही का वही योग रहे ऐसे स्थानों की संख्या कम है, काल ज्यादा है इसलिए बीच में लिखा, परंतु स्थानों की अपेक्षा ये सबसे कम स्थान है। और ऊपर व नीचे असंख्यात असंख्यात गुणा है, ये स्थान कितने हैं, असंख्यात गुणा दोनों और असंख्यात गुणा, फिर चार के बाद ऊपर तीसरे तीन वाले उससे असंख्यात गुणा, और दो समय रहकर फिर परिवर्तन होने वाले उससे भी असंख्यात गुणा, यानी दो दो समय में पलटने वाले वो योग स्थानों की संख्या असंख्यात असंख्यात गुणा होगी, और लगातार आठ समयों तक रहने वाले ऐसे कम हो गए। अब यहाँ ये लगातार वही योग, अभी ये आसान हो जाएगा विशेषार्थ भी और वो भी संग, क्योंकि हमने वहाँ योग की बात कब आई थी, 58 पेज पर थे ना, हमने कहाँ थे, योग मध्य योग बात की थी, हाँ 60 पेज पर, तो हम उसका विशेषार्थ पहले ही पढ़ रहे थे। वही फिर से हम ये 57 या 58 पेज से फिर सब पूरा पढ़ना पड़ेगा, विशेषार्थ पढ़ेंगे अभी, विशेषार्थ हम पढ़ रहे थे ना बीच में आठ समय वाले की बात, और उसके पहले 58 पेज से हम निकले थे। यानी 58 पेज में आठ समय वाले वहां से पढ़ना छोड़कर हम 60 पेज पर आए थे। हाँ तो कितना समय है बाकी, हाँ अभी एक मिनट है, रुकते हैं, ये कल पूरा ही योग वाला संपूर्ण प्रकरण पढ़ेंगे, जहाँ से 57 पेज का वो समाधान है वहाँ से ही पढ़ेंगे, 57 पेज के समाधान से ये योग यव मध्य रचना वगैरह सब फिर दोबारा आ जाएगी उसमें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।